Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Bhakti Vedanta Prabhupada.
योग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री प्रभुपाद की नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। राधा बहरनेश्वर मंदिर इस्कान बहरेन में सायंकाल के सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे अध्याय में और दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में भागवत के मुख्य वक्ता सुखदेव गोस्वामी उनके मुख से परीक्षित महाराज को सृष्टि लीला के उत्तर देने से पहले जो मंगलाचरण रूप स्तुति हुई है उसको सुख स्तुति कहते हैं और सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण भी कहते हैं। वैसे सुखदेव गोस्वामी पहली बार दूसरे स्कंद में ही बोलना शुरू किया है पहले अध्याय में। परीक्षित महाराज का प्रश्न इतना अच्छा था कि सब लोगों का सब समय सब जगह कैसे कल्याण हो और जिसका मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। तो पहले भाग प्रश्न को सुनकर सुखदेव महाराज गदगद हो गए कि महाराज अपना अंत समय आया है लेकिन सबका कल्याण पहले चाह रहा है, कितना बड़ा ये वैष्णव है। कहा आपका प्रश्न वरेयम तव प्रश्न, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, आपका ये प्रश्न जो है ये जो क्वेश्चन है ये बहुत एक्सीलेंट है। और उस भाव में तीन अध्याय बोल गए सुखदेव गोस्वामी, मंगलाचरण याद ही नहीं आया। वॉज स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड स्पीकिंग और प्रार्थना और मंगलाचरण करना उनको किया ही नहीं मंगलाचरण। चौथे अध्याय में परीक्षित महाराज का पहले थोड़ा सा सुखदेव सूत गोस्वामी परिचय दे रहे हैं कि परीक्षित महाराज नौजवान राजपाठ राज लक्ष्मी गृह लक्ष्मी पुत्र परिवार धन सेना सबका परित्याग करके गंगा के तट पे आए। तो पहले तो उन्होंने वैराग उनका जो है वो उनको वहां लाया है और फिर वो परीक्षित महाराज जो पहला श्लोक कह रहे हैं पांचवा श्लोक है दूसरा स्कंद चौथा अध्याय पांचवा श्लोक उससे हम आगे इसका अध्ययन करेंगे और बारहवें श्लोक से लेकर 25 श्लोक तक 13 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण है। 14वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी अपने पिता और गुरुदेव व्यासदेव को प्रणाम करते हैं। तो एक दृष्टि से 14 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण है। और पहला श्लोक हम जो भागवत का श्रवण कर रहे हैं उनके लिए एक कसौटी है। आप अपने आप को परखिए कि आप जब कथा सुनते हैं आपको ये रिजल्ट मिल रही है। श्री राज श्री राजोवाच, राजा परीक्षित कह रहे हैं, समीचीनाम वरो वचो ब्राह्मण। हे सुखदेव गोस्वामी, आपके जो वचन आपने कहे ये समीची, समीची का मतलब अति सुंदर है, परफेक्ट है, बहुत अति उत्तम है, समीची, सम्यक रूप से उचित है, बहुत अच्छे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी जिनके मुख से ये वचन निकले हैं उनका एक और विशेषण दे रहे हैं। सर्वज्ञस्य, आप सब कुछ जानते हैं, आप जो ये बोल रहे हैं क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, केवल सबको जानता है, लेकिन दूसरा एक गुण बता रहे हैं, तवा अनघ, आप निष्पाक भी हैं, आपका हृदय बहुत शुद्ध है, तो आपके हृदय में कोई संसार के भोग की कामना नहीं है, पाप की प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्त तृषई हैं आप। दसम स्कंद में परीक्षित महाराज संबोधन करते हैं सुखदेव गोस्वामी को, निवृत्त तृषई उपगीय मानाय, निवृत्त तृषई, तृषई का मतलब तृष्णा, तृष्णा का मतलब संसार में भोग की कामना है, जिसके कारण भोग करेगा तो आदमी को कामना होगी, कामना होगी, काम पाप से पाप होगा, तो आपके हृदय में तो पाप का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे है निष्पाप सुखदेव गोस्वामी। आपके वचन क्या कर रहे हैं, तमो तमो विस्तरई महियम, मेरे हृदय में जो अंधकार है उसको नाश कर रहे हैं। आपकी जो कथा आप सुना रहे हैं भागवत, तमो विश्रीयते, 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 श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं विश्रीयते, तमहा विश्रीयते, तमो का मतलब अज्ञान तिमरांधस है, वही तमो जो हमारे हृदय में अज्ञानता है, विश्रीयते आस्ते आस्ते वो अंधकार जा रहा है, हमारा हृदय पवित्र होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है, और उसके अंदर एनलाइटनमेंट हो रही है। किस बात से महाराज, आपके दर्शन से, यहां वो नहीं कहते हैं, कहते हैं हरे कथा यतः कथ्यतः कथा, जो आप हरि की कथा कह रहे हैं ना, इससे, वैसे साधु दर्शन मात्र से पवित्र करता है, लेकिन साधु का लाभ है उससे कथा सुनना, तो आप जो अभी हरि कथा सुना रहे हैं, वैसे हरि के एक हरि का अर्थ है जो अपने भक्तों का दुख हर ले, उसको कहते हैं हरि, दुख हरी, दुख हरने वाला। और दूसरा हरि का अर्थ चेतना महाप्रभु कहते हैं प्रेम देई मन हरे, और प्रेम दे के मन को हर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम है मनोहर, मनोहर भगवान मन को हरने वाला है, दुख भी हरता है मन भी हरता है, अनंत कोटि पाप राशि चोरम, अनादि अनंत जन्मों के पाप की राशि है उसको भी चुरा लेते हैं। हरि का एक अर्थ होता है चोर, जो चोरी करता है उसको भी हरि बोलते हैं, तो जो चोरी कर लेता है, ऐसा नहीं है ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में तो भगवान श्री कृष्ण मक्खन के चोर के रूप में बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, गोपंग नानाम दुकोल चोरम, और गोपियों के दुपट्टे चुरा लेता है, बोला ऐसा चोर नहीं है, अपने भक्तों के अनंत जन्म पाप राशि चोरम, लेकिन भक्तों के पाप की राशि को भी चुरा लेते, उनके हृदय के हृदय को भी मन को भी चोरी कर लेते हैं। तो हरि का अर्थ बहुत से अर्थों में, दो अर्थ महाप्रभु ने मुख्य माने हैं, दुख भक्तों के दुख को हर कर ले, हर ले, और प्रेम दे देकर मन हर ले। तो ये श्लोक उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, The crucial test of hearing Srimad Bhagavatam is that one should get positive enlightenment by such an act. Crucial test. Crucial test का मतलब क्या है? आप भागवत सुनते हैं उसका परिणाम क्या होना चाहिए? उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? आपके हृदय में अंधकार नाश हो। देखो भगवान और श्री कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं भक्तों के ऊपर दया करके मैं हृदय से अज्ञान से अंधकार नाश करता हूं, ऐसे भगवान के भक्तों से भागवत सुनने से हृदय से अंधकार नाश होता है। तो अब आप अपने को देखते रहिए कि आपके अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है वो नाश हुआ कि नहीं हुआ। बहुत से भक्तों का हुआ है। बोला इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि जो भगवान की कथा सुनने आए उनके चार पाप कर्मों से तो तत्काल मुक्त हो गए। देखो नशा छूट गया, नशा छूट गया। बहुत से भक्तों को चाय पीने की आदत थी वो भी छूट गई, सिगरेट छूट गई, तंबाकू छूट गई। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तत्काल प्रभाव पड़ा। चार पाप के कर्म तो भक्तों के संग में आके भगवान के नाम कीर्तन से भगवान की कथा से तत्काल ही, ये तो हृदय साफ हुआ ना, अंधकार गया कि नहीं गया? अज्ञानता के कारण ये सब काम आदमी करता है। ये तो पाप कर्म अज्ञानता से होता है, ये तो तत्काल चले गए। आप उसको पकड़ने की कोशिश करो आप रोक नहीं सकते, वो अपने आप भाग जाते। वैसे कितना प्रयास करो नशा छूटता नहीं है, लेकिन हरि कथा में आओ हरि कीर्तन में आओ तो नशा आपको छोड़ के भाग जाएगा। आप उसको पकड़ोगे तो रुकेगा ही नहीं, वो रुक नहीं सकता है वहां। ये तो सबको जीवन में अनुभव है कि कैसे तत्काल हमारे जीवन में इतना प्रकाश हो गया और सबका हो गया, उसका लाभ कितना हो गया, टाइम बच गया, खर्चा बच गया, स्वस्थ बच गया, अपना हेल्थ अच्छा हो गया। ये जो बुराइयां थी कितनी नुकसानकार थी और कैसे बच गया, इतना तो तत्काल आप सबके हृदय में परिवर्तन आया कि नहीं आया? भागवत सुनने से लोगों के हृदय में नहीं है, इतना आया। ये तो ये प्रूफ है कि भागवत प्रोसेस काम कर रहा है, लेकिन लिखा जो यहां शब्द है ग्रेजुअली आस्ते आस्ते ये प्रभाव, पहले ये चीजें गई है, अब आगे ये तो नेगेटिव चीजें गई है, अब पॉजिटिव चीजें हृदय में आनंद की स्फूर्ति होगी। अब ये जो नेगेटिव अज्ञान गया तो जैसे ही भगवत ज्ञान प्रकाशित होगा, ये तो नेगेटिव गया, अब पॉजिटिव प्रकाश होगा तो हृदय में अपने आप उल्लास और आनंद होने लगेगा। इसी को आरंभिक स्कान के दिन में बिगिनिंग में कहते थे ऑलवेज स्टे हाई, क्योंकि सारे लोग उस वक्त में जो हिप्पी थे वो नशा करते थे और नशा करने में एक स्लोगन होता था, नारा लगाते थे आप ये नशा कीजिए और हाई हो जाइए, मतलब ऊपर उठ जाइए, भगवान से मिल जाइए, लेकिन वो नशा उतरेगा तो फिर गटर में गिर जाइए। पहले ऊपर चढ़ जाइए और फिर नीचे गिर जाइए। तो भक्तों ने कहा आप ऐसे कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और ऑलवेज स्टे हाई, सदा ऊपर रहिए, गिरने का कोई संभावना ही नहीं है। ये तो निरंतर नशा चढ़ता रहता है, कम होता ही नहीं। तो ये पहली परीक्षित महाराज अपना अनुभव बता रहे हैं प्रभुपाद, दिस इज रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ परीक्षित महाराज, अपना अनुभव बता रहे हैं। देखो अभी अभी जैसे हमने आपसे कथा सुनी, अभी तो पहले दिन की कथा है, पहला स्कंद पूरा हुआ है, दूसरा स्कंद अभी आरंभ हुआ है, और तत्काल कहते हैं देखो हमारा अंधकार नाश हो रहा है। तो ये इससे क्या होता है, इससे उत्साह बढ़ता है। देखो रिजल्ट आ रहा है तो काम करना चाहिए ना, अब हमारे को रिजल्ट मिल रहा है तो इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसके आगे वाले श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं, अब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं तीन चार श्लोकों में, और वो प्रश्न ये है कि भगवान ये सृष्टि कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया परीक्षित महाराज को कि भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। यह सारी सृष्टि क्या है, बोला भगवान का विराट रूप है और इसका ध्यान करना चाहिए। तो यह सृष्टि होती कैसे है, यह तो परीक्षित महाराज जानते हैं कि सब कुछ भगवान से निकलता है, जन्मादि अस्य यत, सब कुछ भगवान से प्रकट होता है, लेकिन अब जानना चाहते हैं कि यह सृष्टि क्रम कैसे है, ये सृष्टि एक के बाद दूसरा ऐसे कैसे होती है, आखिर ये भगवान की सृष्टि होती है। उसके बारे में भगवान पूछते हैं के भूय एव विवस्ता विवितास्मि। मैं फिर एक बार आपसे ये पूछता हूं, आप मैं सीखना चाहता हूं, विवत्सा अस्मि अस्मि, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, क्या भगवान आत्म माया, भगवान अपनी माया के द्वारा, भगवान अपनी माया के द्वारा यथिदम सृजते विश्वम, ये इस विश्व की सृष्टि कैसे करता है, ये दुनिया कैसे बनाता है, दुर्विभावयम अधीश्वरैहि, और केवल सृष्टि नहीं बनाते हैं और इस सृष्टि के अंदर बहुत से देवताओं को सृष्टि के साथ पैदा करके इस सृष्टि को चलाने का काम उनको देते हैं। ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं कैसे भगवान करते हैं ये सारा काम। तो भगवान की शक्तियां और फिर उनके द्वारा सृष्टि और फिर सृष्टि के संचालन का सारा काम ये भगवान कैसे करते हैं, इसको मैं जानना चाहता हूं। और आगे के श्लोक में सुखदेव महाराज कहते हैं, भगवान की अनंत शक्तियां हैं और अनंत रूपों में प्रकट होके इस सृष्टि का कैसे वो पहले तो प्रकट करते हैं और फिर वापस सारी सृष्टि को वापस समाहित कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं अथवा प्रलय कर लेते हैं। और ये काम कैसे करते हैं, तो भाई इतना बड़ा काम है, जैसे आपको मानो कोई बिल्डिंग बनानी है कितना परिश्रम करना पड़ता है और फिर मिटानी है तो कितना परिश्रम, तो क्या भगवान को इतनी सारी मेहनत करनी है, बोला नहीं। एक शब्द क्या लिखा है, कीर्णयम कीर्णम करोति, कीर्णयम कीर्णम करोति, कीर्णा किसको कहते हैं, कीर्णा का मतलब खेल। ये भगवान का जैसे खेल हो, कैसे खेल है इसको ऐसे समझे, बच्चे कभी जाते हैं समुद्र के किनारे तो बैठ के उधर मिट्टी के घर बनाते हैं, उनका खेल है, और थोड़ी देर के बाद लात मार के उसको मिटा के वापस आ जाते हैं। घंटा एक तो ऐसा उसको बनाने में लगते हैं खेल में कि बस उसमें रम जाते हैं, और थोड़े बुलाओ तो आएंगे नहीं, मैंने घर बनाया है, मेरा ये दुकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, और जब आधे घंटे के बाद आने का टाइम हो तब लात मार के उसी को। तो ऐसे भगवान का ये सृष्टि खेल है। अब ये खेल कैसा अद्भुत है, खेल का मैदान भी भगवान है, खिलाड़ी भी भगवान है, खेल भी भगवान है, करने वाला भी भगवान, कराने वाला भी भगवान, और कोई तो है नहीं भगवान के अलावा। तो ये कैसा अद्भुत खेल है जो भगवान स्वयं सब कुछ बन जाते हैं इस खेल को। भाई सृष्टि करते हैं भगवान तो सब कुछ भगवान से ही निकलता है, तो सबका आदि स्रोत तो भगवान ही है, तो कैसा ये अद्भुत भगवान का खेल है, अपने आप बनाते हैं अपने आप मिटाते हैं, उनका तो ये खेल है। वैसे एक शब्द श्लोक में ऐसा सीधा इसका अर्थ, भगवान क्यों सृष्टि करते हैं कोई पूछे आपको तो उसका उत्तर क्या देंगे, भगवान क्यों सृष्टि करते हैं, तो उसका उत्तर देना कि भगवान की करुणा है सृष्टि, भगवान दया करते हैं, क्योंकि प्रलय काल में सोए हुए जीवों को जगा के अगर एक मौका न दें, अवसर न दें बंधन से मुक्त होके भगवत धाम जाने का, तो भगवान दयालु कैसे हो गए, कृपालु कैसे हो गए। भाई प्रलय काल में सब सो जाते हैं, जैसे बच्चे रात को सो जाते हैं, माताएं उठाती हैं सुबह सवेरे ना, तो ये माता बच्चे को उठाती है क्या नींद खराब करने के लिए उठाती है, नहीं, उसके ऊपर कृपा करती है कि उठेगा काम करेगा तो जीवन इसका भला होगा, सुधरेगा, पढ़ेगा लिखेगा, समझदार बनेगा। सब माताएं उठाती हैं कि नहीं उठाती हैं बच्चों को, तो ऐसे हम प्रलय के समय जैसे नींद में सो जाते हैं तो भगवान जगा के फिर एक मौका देते हैं कि सीख के सुधर के अच्छे आदमी बन के वापस आ जाओ। तो असल में भगवान की दिस इज द मर्सी ऑफ क्रिएशन इज मर्सी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, ये भगवान की कृपा की करुणा की लीला है, भगवान दयालु है। एक प्रश्न किसी ने पूछा एक बार, कहीं कुछ ऐसी भी संस्थाएं कभी होती हैं, उनका एक व्यक्ति कहने लगा कि राम जी आए तो इतना बड़ा नर संहार किया, पूरा लंका के राक्षसों को मार दिया, कृष्ण आए महाभारत युद्ध हुआ, इतने लोग मारे, तो ये राम कृष्ण ये भगवान कैसे होंगे? ये तो इतने लोग मराए हैं तो नरक में पड़े होंगे, ऐसे लोग प्रचार कर रहे थे। तो किसी ने महात्मा से पूछा, साधु संत से, कि महाराज आप कुछ बोलो, ये लोग ऐसे कह रहे हैं। महाराज ने कहा, देखो जब जीव नरक में जाता है तो परमात्मा उसके साथ जाता है कि नहीं जाता है? जाता है कि नहीं जाता है? अच्छा, बच्चे की ऑपरेशन करानी है, अस्पताल में मां ले जाती है तो बेचारे की मां सर के ऊपर हाथ रख के बच्चे के पास बैठी होती है कि नहीं बैठी होती है? ठीक हो जाए, वापस घर ले जाऊं। तो जीवों की ऑपरेशन नरक में होती है, वहां यमराज जी सबको अच्छी तरह से ठीक करके करना का प्रयास करते हैं, तो भगवान माता की तरह पास में बैठा होता है, सर के ऊपर हाथ रख के बेचारा सुधर जाए, वापस घर ले जाऊं, तो भगवान उधर भी जाएगा क्यों? हमारा भगवान सब देशी है, एक देश में थोड़ी है, क्योंकि नरक में नहीं जाता है क्या? तो इसमें हमको कौन सी आपत्ति है? वो कहे तो उसकी मूर्खता है, लेकिन हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमारा भगवान कहीं भी बैठ सकता है, उसको क्या है भाई? क्यों भगवान नरक में नहीं है क्या भाई? परमात्मा जेल के अंदर जो आदमी जाता है उसके हृदय में परमात्मा अंदर नहीं जाते हैं क्या? हम जेल में प्रचार करने जाते हैं, हम बोलते हैं उनको, अरे भाई आप अकेले नहीं आए हो, परमात्मा भी आपके साथ आया है, ये मूर्ख के बच्चे तुम भगवान को भी जेल में लाए। तो ये ऐसा मानना कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान कहां नहीं है? कभी लोग कहते हैं भगवान गर्भ में कैसे आते हैं, भगवान मूर्ति में कैसे हैं? ये भी लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान मूर्ति में कैसे हैं? हाँ, ये तो आपने बनाई है, इसमें भगवान कैसे आ गए? तो हम उनसे पूछते हैं थोड़ा सा आराम से कि भाई भगवान चलो मूर्ति में नहीं आपको लगता है तो कहां है? सब जगह है। अरे भाई सब जगह है क्या? बोला हां सब जगह है। तो अगर सब जगह भगवान है तो मूर्ति सब जगह में नहीं है, बाहर है क्या? तो इसको छोड़ के बाकी सब जगह ऐसा है क्या आपका फार्मूला? भाई सब जगह है तो इसमें भी है भाई। जब सब जगह रह सकता है तो पेट में रहने में उनको कौन सी परेशानी है? दिल में रहता है कि नहीं रहता है? अब दिल से उतर के नीचे पेट में गया तो आपको कोई परेशानी हो गई क्या भाई? जाने में उनको क्या तकलीफ है? वो जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। हाँ, उसको कैसे आप कहते हैं मत जाओ? नहीं नहीं, फिर सब जगह भगवान है तो फिर मंदिर में क्यों आए? तो हम कहते हैं भाई बात सुनो, पानी धरती में सब जगह है? बोला हाँ सब जगह धरती में पानी है। तो प्यास लगती है तो फिर आप नल के पास क्यों जाते हो? कहीं से पानी निकाल के पी लो ना। पानी सब जगह है धरती में, लेकिन मिलेगा वहां जहां कुआं किसी ने खोदा है, नल लगाया है, वहीं मिलेगा। तो भगवान है सब जगह, लेकिन हमने यहां मंदिर में कुआं खोदा हुआ है, यहां नल लगा हुआ है, यहां आओगे तो पानी प्यास बुझेगी, बाहर नहीं बुझेगी। अभी है तो सब जगह तो है, लेकिन जहां जहां कुआं है वहीं पानी मिलेगा ना, सब जगह तो नहीं मिलेगा। हर जगह आप कहोगे पानी पीता, इसे धरती में खोद के आज तक किसी ने पानी पिया क्या? नहीं ना। तो सब जगह होते हुए भी यहां है, यहां प्रकट किया है भक्तों ने अपने प्रेम से, भगवान को प्रकट किया है। तो भगवान का जो ऐसे प्रकट्य भक्तों के प्रेम से होता है, ये भगवान प्रेम के कारण आते हैं, नहीं तो यही मूर्तियां दुकान पे बेचते हैं तब कोई जाता है क्या प्रसाद चढ़ाने उधर? हाँ, यही पड़ी है जयपुर में जाके देखो, सब दुकानों में मूर्तियां पड़ी है बनी हुई, बाहर लोग हथौड़े से तोड़ रहे, तब कोई जाता है क्या उनको प्रसाद चढ़ाने, मथा टेकने जाता है? कोई नहीं जाता है। लेकिन भगवतों के प्रेम से जब यहां प्रकट हो जाते हैं तो वो उसकी पूजा होती है। और पूजा क्या होती है, अंतर इतना है, नया भक्त इस मूर्ति को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं कि भाई ये मूर्ति भगवान का स्वरूप है, और शुद्ध भक्त इसको भगवान मानते हैं, इतना अंतर है। हमारे इसको देखने में हम इसको कहते हैं मूर्ति है, और भक्त शुद्ध भक्त कहेगा ये भगवान है, इतना अंतर है हमारे और शुद्ध भक्त के इसको देखने में। और जो इसको भगवान मानता है उसके लिए भगवान बन के बातचीत करते हैं, जो मूर्ति मानते हैं उसके लिए मूर्ति है, ये आपके व्यवहार से व्यवहार करता है। ऐसे तो भगवत गीता ने भगवान ने कह दिया ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सथैव,
आप मुझे पत्थर मानोगे तो मैं आपके सर के ऊपर पत्थर बन के बसूंगा, आप मुझके प्रेम करने वाला परमेश्वर मानोगे तो मैं आपसे प्रेम करने वाला आपका प्रेमी बन जाऊंगा। आपकी मर्जी, जैसा आप हमसे जानते जानेंगे वैसे आपसे हम व्यवहार करेंगे। तो ये भगवान कैसे हैं? बोला ये सृष्टि भगवान की कीड़ा है, ये भगवान की कृपा दया है। हम बात ये कर रहे थे प्रचार में, जीवन में कभी कोई पूछे कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, तो उसका उत्तर है ये भगवान की करुणा है, कृपा है। ये अगर एक चांस नहीं दें, एक बार पाप किया और सारी उम्र जेल में पड़ा रहे, ये ठीक तो नहीं है ना, उसको दूसरा चांस देना चाहिए ना। तो भगवान दूसरा चांस देते हैं, सेकंड चांस। अब आगे कहते हैं ये प्रकृति तो तीन भौतिक गुणों से बनी हुई है, भगवान गुणों से परे हैं, फिर इस प्रकृति में कैसे आते हैं, अर्थात इस प्रकृति को कैसे ग्रहण करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं। और फिर ये श्लोक कहते हैं अंतिम के, पूछने वाले को मालूम होना चाहिए कि जिसको मैं पूछ रहा हूं उसके गुण क्या हैं। ये गुरु के गुण माने, भागवत में इसको गुरु के गुण कहते हैं। विचेक्षितम् एतन्मे ब्रवीतो भगवान यथा शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः। ये गुरु का पहला लक्षण है, पहले दो लाइन में बोल दिया ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मेरी जिज्ञासा है, ये सब मेरे को ठीक तरह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, भौतिक सृष्टि में स्वयं आ जाते हैं, गुणों से परे होते हुए भी गुणों की सृष्टि में प्रवेश करते हैं, ये सब मैं जानना चाहता हूं। इसमें मेरा थोड़ा सा डाउटफुल इंक्वायरी है, इसमें मुझे थोड़ा सा शंका है, संशय है। और आप तो ब्रवीतु भगवान यथा, आप जैसे ठीक समझें, आपका गुण क्या है? शब्दे ब्रह्मणी, शब्द ब्रह्मण में निष्ठा, आप शब्द ब्रह्म में निश्चित है। एक गुरु जी के लिए दो शब्द होते हैं, एक तो होते हैं ब्रह्म श्रोत्री, ब्रह्म निष्ठ। शब्द ब्रह्म में निष्ठा का मतलब यहां वेद के सारे शास्त्रों का आपको अच्छी तरह से अनुभव का ज्ञान है। और नीचे लिखा है परस्मिंश्च भवान खलो, और आप परमात्मा के, परमेश्वर के साक्षात्कार में भी परिपूर्ण है। ये दो चीजें हैं। कोई आदमी ऐसा महात्मा साधु बाबा जी हो कहते मैंने भगवान का साक्षात्कार किया है लेकिन शास्त्र का कभी अध्ययन नहीं किया है, तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ब्रह्म श्रोत्री भी होना चाहिए, शब्द ब्रह्म निष्णात। सुखदेव महाराज शब्द ब्रह्म निष्णात भी है, इसका मतलब शास्त्र के विधान को भी जानते हैं और अपने अनुभव से परमेश्वर का भी अनुभव किया हुआ है, तो साक्षात रियलाइज भी है। इसी को हमारे आचार्य गाते हैं, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार, अमी तो कंगा दाए तव पाचे पाचे। प्रभुपाद के शिष्यों में पहले श्याम सुंदर और मालती, ये पहले ग्रस्त शिष्यों में विवाह कराया था प्रभुपाद जी ने जानकी का और मुकंदा का, और फिर दूसरे भक्तों का विवाह कराया, लेकिन ये पहला पति पत्नी था जिनको सरस्वती छोटी बची थी, और वो छोटी बच्ची को लेके प्रभुपाद के कहने के ऊपर तीन परिवार ग्रस्त अमेरिका से इंग्लैंड में आए थे। प्रभुपाद ने कहा इंग्लैंड का सारी दुनिया के ऊपर राज था, हमारे गुरु महाराज इंग्लैंड में भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए अपने दक्षिणा के पैसों से कुछ सन्यासियों को भेजा, लेकिन वो सन्यासी वहां सफल नहीं हो पाए। अब मैं हमारे ग्रस्त शिष्यों का भेज रहा हूं, और तीन ग्रस्त शिष्यों को प्रभुपाद ने बड़ी अच्छी तरह से समझा के और कहा कि अब जाके आप वहां प्रचार करो। तो वो बच्ची छोटी सरस्वती को एक बार प्रभुपाद जी के हाथ में कृष्ण की मूर्ति थी, वो तो उस वो कह रही है मुझे दे दो, प्रभुपाद ऐसे करके दिखा के छुपा के है नहीं, इधर रख दिया। अब बोल कहती है प्रभुपाद कहाँ है कृष्ण, कहाँ है प्रभुपाद? बोल तो आपके पास है प्रभुपाद, कृष्ण कहाँ है? आपके पास है। भाई कहाँ है? मेरे पास नहीं है। बोल नहीं आपके पास है। तो वो छोटी बच्ची ऐसे कह रही थी, तो भक्त कह रहे थे देखो ऐसे भगवान भक्तों जो भगवान गुरु गुरुजन है उनके हृदय में भगवान उन्होंने पहले से साक्षात्कार किया हुआ है, और वो जिसको दिखाना चाहे देना चाहे उसको दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है, वो देना चाहे तो दे सकते हैं। तो केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं होना चाहिए, अपने अनुभव का ज्ञान भी होना चाहिए जीवन में। तो एक शास्त्र का ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रियलाइजेशन होनी चाहिए। ये गुरुजन ये सुखदेव महाराज का विशेषण है। अब ये प्रश्न पूछा कि आप महाराज बताइए हमको कृपा करके, ये सृष्टि लीला को हम जानना चाहते हैं। तो ये और इसके ऊपर श्री प्रभुपाद जी का यहाँ भाव है और आगे भी भाव है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको कहते हैं कि भक्तों के लिए भगवान की बाहरंग शक्ति के द्वारा, एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा भौतिक जगत की जो सृष्टि है वो भी इतनी प्रिय है जितनी अंतरंग इंटरनल पोटेशन पोटेंसी इंटरनल एनर्जी राधा रानी के हिलादिनी शक्ति के द्वारा रास लीला रसमयी है। तो दोनों शक्तियां भगवान की भक्तों को प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सृष्टि लीला में रुचि नहीं है और रास लीला ही केवल उनका उद्देश्य, ऐसा नहीं। सृष्टि लीला भगवान का ऐश्वर्य है और रास लीला भगवान का माधुर्य है। तो ऐश्वर्य देखने से, ऐश्वर्य का मतलब चमत्कार, इतना बड़ा भगवान सृष्टि करते हैं, एक ब्रह्मांड नहीं ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांडों पे कितने और लोग रह रहे हैं, ये 84 लाख सब यहां नहीं है हमारे पास, बहुत से ब्रह्मांड है, वहां कितने और जीव हैं, कैसे भगवान ने ये सब बनाया, ये किसी की समझ में आ जाए, ये तो भगवान का बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, इतने सारे ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, सब ब्रह्मांड अपनी जगह पे चल रहे हैं, आकाश में इतने तारे देखते हैं अपनी अपनी जगह पे हैं, रोज दिखते हैं, रोज फिर अदृश्य हो जाते हैं, कैसे ये सब भगवान काम चला रहे हैं, ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है। तो भगवान की ऐश्वर्य लीला जैसे 10वां अध्याय भगवत गीता का भगवान की ऐश्वर्य लीला, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवान का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से क्या होता है, भक्त के हृदय में भगवान के लिए आदर पैदा होता है, सम्मान पैदा होता है, भगवान का शरण लेने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है, भाई चमत्कार होगा तो नमस्कार करेगा, नहीं चमत्कार होगा तो नमस्कार नहीं करेगा, दुनिया का ये नियम है चमत्कार को नमस्कार है। इफ देयर इज अ ऑपुलेंस देन वी विल अप्रिशिएट दैट एंड वी विल एक्सेप्ट दैट एंड वी एग्री टू सरेंडर टू दैट, भाई उसमें के पास कुछ है तब करेंगे ना। और भगवान की रास लीला अंतरंग शक्ति के द्वारा वो माधुर्य लीला है। जो भगवान का त्रिपाद विभूति, त्रिपाद विभूति कहते हैं वैकुंठ जगत को, जो वैकुंठ जगत है उसको कहते हैं त्रिपाद विभूति। त्रिपाद विभूति का मतलब 3/4 भगवान की वो भी विभूति है, विभूति का मतलब वही ऑपुलेंस है। वो कैसे प्रकट होता है, बोला वो प्रकट नहीं होता है, वो नित्य है, वो पैदा नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है, वो सदा जैसा है वैसा ही है, उसको कहते ही वैकुंठ है। जहां कोई सृष्टि नहीं होती है वहां सृष्टि नहीं होती है, वो नित्य शाश्वत है, सदा रहने वाला है, और उसका कौन संचालन चलाता है, भगवान की अंतरंग शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। वो भगवान की अंतरंग शक्ति, वो जो अंतरंग शक्ति 3 विभाग में है, संबित है, संदिनी है, हलादिनी है, ये सारा काम आध्यात्मिक जगत का करती है। एक पाद विभूति भगवान की, एक पाद विभूति का मतलब एक पांव, एक 1/4, ये है भौतिक जगत। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये भगवान की 1/4 चौथाई विभूति है, ये इसमें क्रिएशन होती है, इसमें सृष्टि होती है, और ये सृष्टि का कार्य भगवान की बाहरंग शक्ति करती है। ये एक्सटर्नल एनर्जी का कार्य है, जो छाया रूप है दुर्गा, उसका ये कार्य है और इसकी सृष्टि होती है, कुछ समय रहती है और फिर वापस विलीन हो जाती है। तो ये सृष्टि केवल भौतिक जगत में होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सृष्टि नहीं होती, न वहां क्रिएशन है और न वहां मेंटेनेंस एनिहिलेशन है, वो नित्य है जगत। इसलिए कहते हैं कि ये दुख नहीं है संसार में कि आज बुखार आ गया, कि आज चोट लग गई, कि आज मेरा कमर में दर्द है, ये दुख नहीं है। दुख ये है कि बार बार जन्म लेके मरना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा दुख है। पुनर्वृत्ति जन्म, पुनर्विवरणम, जठरे जगन, और माँ के गर्भ में जाना, ये दुख है असल में। इसका निवारण कहाँ है? जब भगवत के धाम जो नित्य शाश्वत है, वहां जिसको जानने की अभिलाषा इच्छा हो, तभी इस दुख से मुक्त हो सकता है। अब ये प्रश्न जब पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? अब जो सुखदेव गोस्वामी ने किया, ये सुखदेव गोस्वामी बोल तो नहीं सके ना, तो सूत गोस्वामी कमेंट्री में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी? सूत वाचा इति उपामंत्रितो राज्ञा। राजा परीक्षित ने जैसे उनको जिज्ञासा की, बीइंग रिक्वेस्टेड, उनको उपामंत्रित, उपामंत्रित मतलब कुछ प्रश्न के उत्तर देने के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने क्या किया? गुणानुकथने हरि ही। क्या जिज्ञासा की? बोला हरि के गुणों का कथन करने की। कौन से हरि के गुणों का कथन करने की? के भगवान कैसे सृष्टि करते हैं। तो क्या किया सुखदेव गोस्वामी ने? ऋषिकेशम अनुस्मृत्या। उन्होंने इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश का अनुस्मरण किया, उन्होंने भगवान ऋषिकेश का अनुस्मरण किया। स्मरण का मतलब केवल याद करना, अनुस्मरण का मतलब जैसे पहले गुरुजनों ने सिखाया है उसी पद्धति से, उसी मेथड से, उसी प्रकार से स्मरण किया। ऐसा नहीं अपना स्मरण का कोई नया आइडिया निकाला, नहीं, नया वे नहीं। अनु का मतलब है फॉलो, ही फॉलोड दी परंपरा सिस्टम ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड ऋषिकेश। प्रत्योक्तम परिचक क्रमे प्रचक क्रमे, उत्तर देने से पहले उन्होंने भगवान का अनुस्मरण किया। ये क्या है असल में? श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसके ऊपर है कि जब कोई प्रवचन करता है, सत्संग करता है, तो पहले वो हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये जो हम ओम नमो भगवते वासुदेव कहते हैं, गुरु वंदना करते हैं, हाँ एक श्लोक में चे गुरुवे गौर चंद्रा है, गुरु महाराज को और गौरचंद्र चेतना महाप्रभु को, राधा राधिका तदालिय, राधा रानी और उसके सारे समूह को, सारी सखियों को, और कृष्णाय कृष्ण भक्ताय, भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के अंतर भक्तों को, तद भक्त और उसके भक्तों के भक्त जो अभी धरती पे हैं, उनको सबको नमस्कार करते हैं। तो एक ही श्लोक में इन सबको प्रार्थना करते हैं। तो इस समय हम क्या करते हैं असल में, इसको प्रभुपाद ने कहा ये वंदना भक्ति है, ये भक्ति का अंग है, इसको कहते हैं वंदना भक्ति। वंदना करना का मतलब प्रार्थना करना, भगवान का अनुस्मरण करना। इसका अर्थ ये होता है कि इस वक्त हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अब हम आपके, आपकी कथा लीला के विषय में बोलने के लिए जा रहे हैं, लोगों ने पूछा है, हमारे में ये सामर्थ्य नहीं है कि हम आपकी लीला कथा कह सकें, अब आप हमारी वाणी के ऊपर विराजमान होके अपनी ही महिमा को कहने का हमको सामर्थ्य देना। ये सुखदेव गोस्वामी आगे इस बात को कहेंगे। गौर गोविंद महाराज कहा करते थे, हम हैं पाइप, ऊपर से जो सामान आता है ये हम आपको डिलीवर कर देते हैं। उनका ये कहने का भाव होता था कि ऊपर से जो सामान भगवान से आता है, हम हाथ जोड़ के कहते हैं, वहां से जो देता है वो हमारे यहाँ से प्रवाह रूप से बाहर आ जाता है। हम अपना इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करके अपना विचार नहीं डालते हैं, लेकिन कथा करने, प्रवचन करने वाला अथवा जो जिसको कहा गया है परंपरा से धर्म के प्रचार का कार्य करो, उसकी कुशलता यह है कि उन्हीं सब चीजों को आधुनिक समय के अनुसार लोगों की जो स्तर है उसके अनुसार सामान्य उदाहरण देके उन चीजों को समझाए, ये उसकी कुशलता है कि उसी सत्य को कॉमन एग्जाम्पल जो लोकल जीवन में है वैसा देके उसको समझाने का प्रयास करे, लेकिन असली जो तत्व है वो भगवान जैसे प्रेरणा दे ऐसे बोलना चाहिए। तो ऐसे सुखदेव महाराज ने भगवान का स्मरण किया। तो यहां तक है 12वें श्लोक से सुखदेव महाराज की स्तुति शुरू होती है। The devotees of the Lord, while delivering speeches and describing the transcendental attributes of the Lord, do not think that they can do anything independently. They think that they can speak only what they are induced to speak by Supreme Lord. एक बार एक बहुत पत्रकार, बहुत बड़ा पत्रकार, न्यूज रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद से इंटरव्यू लेने के लिए आया। जब इंटरव्यू लेने आते हैं ना कोई, तो अच्छी तरह से स्टडी करके आते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या किया है, कहां से आए, ऐसा नहीं है, बड़े समझदार होते हैं। वो तैयार होके आया और प्रभुपाद से प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी, इस उम्र में आपने इतना सारा लिटरेचर लिखा है, हाउ इज इट पॉसिबल, आपने इतना सारा ऐसे कैसे लिखा है, ये कैसे संभव है। प्रभुपाद ने उत्तर नहीं दिया, शांत रहे, लेकिन जो शिष्य बैठे थे वो जरा उतावले थे, बोला गॉड इंस्पायर्ड हिम। उन्होंने कहा भगवान ने इनको इंस्पायर किया। तो जो पत्रकार था कि तो आज तक भगवान ने इंस्पायर तो मूसा को किया है सिर्फ, और कोई हिस्ट्री में किसी को भगवान ने इंस्पायर किया है ऐसा तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो क्या ये इतना बड़ा महात्मा है कि इसको भगवान ने इंस्पायर किया है लिखने के लिए। तो उन्होंने सीधा प्रभुपाद से पूछा, इज योर डिसाइपल स्पीकिंग, इज इट करेक्ट, ये जो आपका शिष्य कह रहा है कि आपको भगवान ने इंस्पायर किया ये सही है। प्रभुपाद ने कहा नो। तो फिर उसने पूछा, फिर बोला आई एम डिक्टेटेड बाय गॉड, इंस्पायर नहीं किया है भगवान ने, लिखवाया है और मैंने लिखा है। पत्रकार अपना बोरी बिस्तर उठा के चला गया। अब और क्या पूछे, ऐसा तो कोई एग्जाम्पल, बोला भगवान ने लिखवाया है और मैंने लिखा है, इट इज डिक्टेटेड बाय गॉड। क्या प्रभुपाद ने अपने मर्जी मन से कहा, नहीं, बलदेव विद्याभूषण ने अपनी टीका का नाम रखा गोविंद भाष्य, मेरे को वेदांत सूत्र जैसे गोविंद देव ने लिखाया ऐसे मैंने लिखा है। तो ये सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा भगवान ने मुझे लिखाया है और मैंने लिखा है, इसका अर्थ है ये प्रभुपाद के जो पुस्तक हैं ये सीधा भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। ये प्रभुपाद ने जो लिखा है ये भगवान का सीधा संदेश है। जब तक इसकी इस इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझेंगे तब तक असल में हमारा जिसको कहा जाए कि एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ में उतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में लोग भगवान को कम जानते हैं, भाई शंकराचार्य को जानते हैं, जीसस क्राइस्ट को जानते हैं, भगवान को नहीं जानते क्योंकि उसी में उनका विश्वास है। ऐसे प्रभुपाद के इन वचनों के ऊपर जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान के तरफ आगे बढ़ना बहुत आसान नहीं। तो ये प्रभुपाद के किताब का कितना इम्पोर्टेंस है इन पुस्तकों का। उन्होंने कहा 10,000 साल तक धरती के ऊपर ये पुस्तक, ऑल दीज बुक्स विल रिमेन फॉर 10,000 ईयर्स ला बुक, ये पृथ्वी के ऊपर धर्म शास्त्र के रूप में 10,000 वर्ष तक रहेंगे। तो वो जो चीज देके गए हैं वो बहुत काल तक, ये अभी तो कृष्ण को गए 5,000 साल हुए, तो 10,000 साल तक ये पुस्तक रहेंगे, चेतना महाप्रभु का गोल्डन एरा रहेगा। तो ये बात ध्यान से समझने वाली है कि प्रभुपाद के पुस्तक कितने महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास है तो उसका अध्ययन करना चाहिए, और हम अनुभव से कहते हैं, हम उसी चीज को 10 बार पढ़ते हैं तो 10 बार अलग अलग अर्थ निकलता है, सेम वही बात नहीं समझ में आती है, हर बात कुछ नया ही कुछ नजर आता है। और उन शब्दों के अंदर जैसे मुझे समुद्र के किनारे पे कोई खड़ा होगा तो मछली मिलेगी, खेखड़ा मिलेगा, लेकिन गहराई में जाएगा तो हीरा मोती मिलेगा। तो ऐसे ऊपर ऊपर से देखेंगे तो शब्द दिखाई देंगे, कुछ नहीं आते, केवल आपको रासकल ऐसा प्रभुपाद ने कहा वही दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर रस जो भगवान राधा कृष्ण का रस है वो तो तब दिखाई देगा जब इसकी गहराई में गोता लगाएंगे, नहीं तो कहेंगे ये स्वामी जी तो सबको डांट रहे हैं जो आए उसको बोलते ये बदमाश है, ये साइंटिस्ट ऐसे हैं, ऐसे करे, वो तो एक्सटर्नल दिखेगा, लेकिन इंटरनल में उन्होंने क्या भगवत तत्व को कैसे निरूपण किया है इसके लिए बहुत गहरा जाना पड़ेगा। अब पहला श्लोक आज पढ़ते हैं, ये 13 श्लोक हमको इस यात्रा में पूरा करने हैं सुख स्तुति के, आपको समय मिले तो पढ़ के देखना। पहला श्लोक 12वां है, श्री शुक वाच मनः परस्मै, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। सदुद्भवा स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रैतयाय देहिनाम अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। श्री शुकवाच नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे। पहले कहते हैं नमस्कार करता हूं किसको, परम पुरुष को, परस्मयी का मतलब परम पुरुष, पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूं। प्रभुपाद लिखते हैं पुरुषोत्तम भगवान को 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम हूं मैं। जीव 2 प्रकार के हैं, एक क्षर जीव है एक अक्षर जीव है, एक बद्ध जीव है एक मुक्त जीव है, और इन दोनों के ऊपर परमात्मा है और परमात्मा के ऊपर मैं पुरुषोत्तम हूं। तो मैं पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूं। ये जो नमस्कार शब्द है पद्म पुराण में आया है, सकृत कृष्ण प्रणाम हो, एक बार कृष्ण को कोई प्रणाम करे 10,000 अश्वमेध अवृत्त स्नानम, कोई 10,000 अश्वमेध यज्ञ करे और उसके बाद स्नान करके पूरा करे उसके बराबर नहीं है। एक कृष्ण को प्रणाम, 10,000 यज्ञ वाला स्वर्ग में जाके वापस धरती पे आ सकता है, लेकिन कृष्ण को एक प्रणाम करने वाला पुनर्भवाय न विद्यते, वापस जन्म नहीं। कृष्ण के एक प्रणाम का इतनी महिमा है भागवत में, एक बार जो भगवान को प्रणाम करता है नमस्कार करता है वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। प्रणाम ये कोई, इसलिए नमस्कार भागवत पूर्ण आहुति में 2 बातें कही गई है। आखिरी भागवत जहां पूरा होता है वहां 2 शिक्षाएं हैं, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अगर सब का इकट्ठे होके भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो सब पाप नाश हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन करने से पाप नाश होते हैं, लेकिन पाप का फल जो है वो तो दुख है, कोई पाप करेगा तो दुख भोगना पड़ेगा, दुख कैसे नाश होगा। प्रणामो हरिम दुख शमनम, भगवान को प्रणाम करना नमस्कार करने से दुख नाश हो जाता है। तो भागवत के पूर्ण आहुति में 2 बातें हैं, एक भगवान को प्रणाम और एक भगवान का कीर्तन। कीर्तन से होता है पाप नाश और प्रणाम से होता है दुख का विनाश। कहते प्रणाम जब भगवान को करते हैं, माथा भगवान के सामने टेकते हैं तो जो माथे के ऊपर लकीरें उल्टी सीधी कर्मों की हैं वो अपने आप सीधी हो जाती है। बोला कैसे सीधी होती है? जैसे बोला ऑफिस में ठप्पे के ऊपर वो सब उल्टे शब्द होते हैं, जैसे सीधा करके ऐसे लगाते हैं तो सीधे पढ़ने में आते हैं। तो जो कुछ उल्टा सीधा यहाँ है, माथा भगवान के सामने टीका सीधा हो गया, ओ एकदम सीधा हो जाए। और भगवान के यहाँ कीर्तन जब करते हैं और ताली बजाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे, ये हाथ की लकीरें बदल जाती, ये उल्टे सीधे लकीरियां कहीं से हो गई होगी तो अब अपने आप बदल जाएंगे कीर्तन में। और पाप के तो पक्षी भाग ही जाएंगे, पाप प्रणाशनम। एक छोटा सा बच्चा किसी पेड़ के ऊपर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 चिड़िया बैठी हो, कौए बैठे हो, एक बच्चा ही केवल ऐसे हरी बोल करेगा सब उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? उड़ जाएंगे ना। ऐसे ये शरीर रूपी हमारे वृक्ष के ऊपर कई जन्मों के पापों के पक्षी बैठे हुए हैं, कीर्तन में हरे कृष्ण बोला सब एकदम उड़ गए। भाई उड़ के कहाँ जाके बैठेंगे? बोला बहुत नहीं करने वाले हैं उसके सर के ऊपर, खाली जगह पड़ी है वहां जाके थोड़ा विश्राम कर लेंगे, बहुत है ऐसे। कोई उनको उनकी चिंता मत करो कि बेचारे कहाँ जाएंगे, यहां से भगाओ। इतने दयालु ना, कीर्तन करो जोर से कि ये सब यहां से भाग जाएं। तो सारे श्लोकों में नमस्कार कहते हैं, नमस्कार, नमस्ते, नमः, नमः परस्मई, परस्मई का मतलब परम, उससे ऊपर कोई बड़ा नहीं है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। पुरुषाय, जो पुरुष है, जो भोगता है, जो इंजॉयर है, मैं मतलब पुरुषोत्तम भगवान परम पुरुष को, भूयसे, भूयसे जो परिपूर्ण है, ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णाद पूर्ण मुदच्यते, भगवान कैसा है? बोला परिपूर्ण है, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं जो परिपूर्ण है। और क्या उससे निकलता है? सद उद्भव स्थान निरोध लीलया, ये तीनों बातें कर दी, उनके द्वारा सृष्टि होती है, पालन होता है और निरोध, निरोध का मतलब है प्रलय, समाप्त, ये तीनों काम करते हैं। ये क्या है? उनकी लीला है। वो एक भगवान ये तीनों काम कैसे करते हैं? बोला ये तो सृष्टि में तीन गुण अवतार लेकर करते हैं। ब्रह्मा जी के अवतार से सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप से पालन करते हैं और शंकर जी के रूप से संहार करते हैं। तो ये तीन रूप भगवान धारण करते हैं। तो कितने ब्रह्मा हो गए, कितने शंकर होंगे, कितने विष्णु होंगे? जितने ब्रह्मांड उतने शंकर, उतने विष्णु उतने ब्रह्मा, कोटि शंकर कोटि ब्रह्मा कोटि विष्णु। जो अगर कोटि ब्रह्मांड है तो कोटि है, ये एक नहीं है, इतने सारे हैं, जितने एज मेनी प्लैनेट दैट मेनी ब्रह्मा शंकर एंड विष्णु, लेकिन भगवान एक है और ये इतने सारे विस्तार हैं इनका। तो ये तीनों को भगवान, भगवान ही कंप्लीट है, वो ये तीन काम, ग्रहित शक्ति त्रैतया देही नाम, यहां ये प्रभुपाद तात्पर्य में तीनों का नाम लिखा है कि ये तीनों गुण अवतार हैं, ये सृष्टि का कार्य करते हैं भगवान, कृष्ण नहीं करते हैं, लेकिन ये सब कृष्ण से निकलते हैं इसलिए कृष्ण इन सब के माध्यम से कार्य करते हैं। ये सब कहां से निकलते हैं? बोले श्री कृष्ण से निकलते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे एक भगवान विष्णु हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, ऐसे एक भगवान विष्णु का रूप इस पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। तो एक जो हमारे हृदय में है वो तो उसको कहते हैं परमात्मा का रूप, वो क्षीरोदक्षायी विष्णु, क्षीर सागर में सहन करने वाला विष्णु परमात्मा। लेकिन जो ब्रह्मांड पूरे में, एक ब्रह्मांड में एक विष्णु प्रवेश करता है उसको कहते हैं गर्भदक्ष, गर्भदक्षायी विष्णु। शब्द गर्भदक्षायी का अर्थ क्या है? गर्भ उदक, उदक का मतलब जल, उदक का मतलब लिक्विड पानी, शाही का मतलब सोने वाला, गर्भ सागर में सोने वाला, गर्भ सागर के जल में सोने वाला विष्णु। ये असल में विराट रूप है। ये जो विष्णु है कितना बड़ा है, बोला जितना ब्रह्मांड है उतना बड़ा है। इसलिए त्रिवंतपुरम के मंदिर में जब जाएंगे, जो अनंत पद्मनाभ का मंदिर है, उस मंदिर का दर्शन एक गेट से नहीं है, तीन गेट से। चरण एक गेट से देखो, नाभि जिससे कमल के ऊपर ब्रह्मा होता है बीच वाले गेट से, और मुख तीसरे गेट से लक्ष्मी चरण के ऊपर बैठी है। इसका मतलब है कि तीनों लोकों में भगवान छाया हुआ है, एक लोक में नहीं है। पाताल लोक से लेकर और सत्य लोक तक पूरे का पूरा भगवान का आकार है। तो ये जो प्रश्न पूछा है, इस विराट रूप के विषय में पूछा है कि ये विराट सृष्टि विराट रूप से कैसे निकलती है, ये सृष्टि कहां से निकलती है, विराट रूप से निकलती है। कौन है विराट पुरुष? गर्भोदक्षा है, विष्णु विराट पुरुष है। उसके चरण जो है वो पाताल लोक है, और उसका जो सर का ऊपरी भाग है वो सत्य लोक है। वो पूरे वो कितना छोटे, एक बार कुंभ मेले में हम बैठे थे, बोला एक अमृत का एक ड्राप गिरा है यहां, लेकिन वो ड्राप कितना बड़ा होगा जो देवताओं के मंथन से निकला होगा। वो ड्राप नहीं तो किलोमीटर से ज्यादा एरिया में गिरा होगा। हमारे ड्राप का कंसेप्ट क्या है, हम कतरे को समझते हैं कि एक ड्राप का मतलब एक बूंद होगा, लेकिन देवताओं के कलश का ड्राप को इतना छोटा नहीं होगा। वो कम से कम एक किलोमीटर एरिया के अंदर पूरा जहां है वो सारा अमृत प्रकट हो जाता है उस वक्त, और उधर ही सारे उसी एरिया में दो 400-500 किलोमीटर में सब लोग नहाते हैं। और ऐसा स्थान है जिसके इतने करोड़ों लोग नहाते हैं, उधर किसी का भेदभाव नहीं है, कौन सी जाति का कोई नहीं पूछता है, स्त्री या पुरुष है कोई नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो तीर्थ है, भगवान का है, वहां किसी को आगे पीछे किसी को करने का स्थान नहीं है। तो कितना बड़ा होगा भगवान का ये विराट रूप, कितना बड़ा होगा इसका सोचा भी नहीं जा सकता है। तो ये भगवान तीन शक्तियों के द्वारा अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य, इसको सामान्य संसारी लोग इसको समझ नहीं सकते हैं कि ऐसे भगवान कैसे कर। उपलक्ष्य का मतलब इसके अंदर भगवान नहीं दिखता है, भगवान है इसके अंदर लेकिन दिखता नहीं है। बोला कैसे नहीं दिखता है, बोले जैसे दूध के अंदर मक्खन है दिखता नहीं है। भाई दूध में मक्खन दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन दूध में मक्खन है कि नहीं है? जैसे दूध में मक्खन नहीं दिखता है, ऐसे संसार में भगवान नहीं दिखता है। बोला फिर कैसे दिखेगा? सबके लिए अनुपलक्ष है, सबको नहीं दिखता है, लेकिन जिसको मंथन करना आता है वो तो मक्खन निकाल सकता है अंदर से। मंथन जिसको करना आता है वो मक्खन निकाल सकता है। ऐसे मंथन का एक परिभाषा है साधन, जो हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के पूजा करते हैं। ये आगे वाला श्लोक आएगा, सुखदेव महाराज कहते हैं यद कीर्तनम यद सुमरणम, उसका सुमरण उसका कीर्तन उसका पूजन, ये चार श्लोक के बाद आएगा। उस वो इसको देख सकता है, ज्ञान चक्षु, जिसके पास ज्ञान चक्षु है ये देख सकता है, लेकिन मूर्ख नहीं समझ सकता है कि भगवान कैसे सब जगह है। तो यहां ये उदाहरण दिया है, पहले आपको कभी बताया होगा ये कि वो राजा ने मंत्री से पूछा था भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा, क्या करता है, कभी आपको कथा बताई होगी। मंत्री बेचारा दुखी हो गया कि ये कहां से महाराज को उत्तर दूं। बोला हमारे को प्रमाणित करके प्रूफ करके दिखाओ। घर एक महीना छुट्टी लेके गया, सारे शास्त्र पंडितों को बुलाया, तो बच्चा उसका था का पिताजी कितने दिन से जा नहीं रहे हैं राज कार्य में, घर में क्यों दुखी दिख रहे हैं। बोला ये राजा ने तीन प्रश्न पूछे हैं। बोला क्या पूछा है? बोला भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा, क्या करता है। बोला ये तो मैं उत्तर दे दूंगा। पिताजी ने कहा बच्चा तो बड़ा प्रतिभाशाली है, तो यही उत्तर देता, इसी को ले जाता हूँ महाराज के पास लाए। बोला आप मेरे प्रश्नों के उत्तर? बोला ये हमारा बालक देगा। बोला बच्चे को आता है? बोले बेटा कहाँ है भगवान? बच्चा बड़ा बुद्धिमान था। बोला महाराज भारतीय संस्कृति में मेहमान आता है तो आदमी पूछता है, जलपान तो पूछना चाहिए, सीधा प्रश्न करते हो। हाँ ये तो ठीक है, क्या पियोगे? तो मैं बालक हूं दूध पीऊंगा। भाई इसको दूध लाके दो। दूध लाके दे दिया। बच्चा दूध पिए नहीं, वो अंदर उंगली घुमा रहा है ऐसे। तो अरे भाई जल्दी करो पियो उत्तर दो, क्या कर रहे हो? बोला देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? बोला इसके अंदर मक्खन है। बोला हाँ मक्खन है। बोला दिख नहीं रहा। बोला कैसे दिखेगा? नहीं दिख रहा है। हाँ है। बोला महाराज आपका पहला प्रश्न क्या है? बोला भगवान कहाँ है, बोला भगवान ये आए सारे संसार में ऐसे है जैसे दूध में मक्खन है। अब मैं ढूंढ रहा हूं दिख नहीं रहा है। बोला दिखेगा कैसे, बोला इस दूध को गर्म करना पड़ेगा। बोला हाँ ठीक है। बोला फिर थोड़ा ठंडा करके इसके अंदर दही डालना पड़ेगा थोड़ा, फिर रात को जामुन डालेंगे जम जाएगा दही बन जाएगा, फिर सुबह इसको मंथन करेंगे तो इसके ऊपर मक्खन आ जाएगा। हाँ बोला ऐसे निकलता है ऐसे मक्खन है। बोला तो फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है, बोला भगवान कैसे मिलता है, बोला भगवान ऐसे ही मिलता है, पहले थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, फिर किसी गुरु के शरण में जाके थोड़ा सा जामुन डालना पड़ेगा नाम का, उनसे दही डालना पड़ेगा तो फिर आपका जीवन थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा। दही की तरह दूध बिगड़ भी जाता है और उछलता भी है, दही पक्का होता है खराब नहीं होता है। तो जो जामुन डल जाएगा और गुरुजनों के शरण में बैठकर जीवन में नाम लोगे और फिर क्या करो, बोला फिर जैसे मंथन करते हैं उसमें इसमें हरे कृष्णा जपो तो क्या होगा, बोला बोला भगवान दिख जाएगा, ये मंथन करने से मक्खन निकलेगा। बोला फिर तीसरा प्रश्न भगवान क्या करता है, बोला महाराज दो तो उत्तर दे दिए ना, अब ये सुनाइए कि आप शिष्य बन के पूछ रहे हैं कि गुरु बन के पूछ रहे हैं। बोला पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। फिर महाराज आप बैठे हैं सिंहासन पे और मैं नीचे बैठा हूं तो उत्तर मैं देता हूं, मैं गुरु हुआ ना, फिर क्या करूं, बोला मैं ऊपर बैठूंगा आप नीचे बैठो, उत्तर मांगना है तो ऐसे करो। वो नीचे बैठा ये बालक ऊपर बैठा, बोला आप बताओ बेटा भगवान क्या कर रहे, बोला यही करता है कभी मेरे को ऊपर बैठा था कभी तेरे को ऊपर बैठा था। ये कहां किसको कहां ऊपर बिठाता है किसी को नीचे बिठा था यही करता है। तो ये भगवान कहां है, तो सब जगह है, क्या करता है ये हमको समझ में नहीं आता है लेकिन सब कुछ करता है। हरे कृष्णा। आज की कथा को यहां विराम देते हैं। तो ये भगवान की सृष्टि लीला का पहला श्लोक है। सुखदेव महाराज के इन 12 श्लोकों का हम श्रवण आने वाले इस सप्ताह में करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? नहीं, कल वर्किंग डे है, प्रसाद खाओ भाग जाओ। हरे कृष्णा।